ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववानी की मुलाकात। स्थानीय चुनाव, कोरोना संक्रमण, लगायत विषयों में हुआ विचार विमर्श। देश भर में आज कोरोना के 8,017 नए मामले आए सामने, संक्रमित 15 की हुई मौत। मार्ग तेज गति से भौतिक उपस्थिति में ही कक्षाओं को संचालित करने के पैप्सिन ने सरकार से की मांग। इस विषय में सीसीएमसी लेगी निर्णय। शिक्षा मंत्री देवेंद्र पौड़ेल का जवाब। और भारत में कोरोना के प्रकोप में लगातार तीसरे दिन देखी गई है कमी। संक्रमण के नए मामले ठीक होने वालों से रहे कम। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा के बीच भेंटवार्ता हुई। राष्ट्रपति शीतल निवास में हुई भेंटवार्ता में उनके बीच स्थानीय तहों के चुनाव, कोरोना और इस पर नियंत्रण के लिए सरकार के कदम लगाए विषयों में विचार विमर्श हुआ। ये जानकारी राष्ट्रपति के स्वकीय सचिव डॉ भेषराज अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि ये भेंटवार्ता उनकी नियमित भेंटघाट का हिस्सा थी। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति की बैठक कल शुक्रवार के लिए बुलाई गई है। वर्चुअल होने वाली इस बैठक में केंद्रीय कार्य संपादन समिति गठन के संबंध में विचार विमर्श होने की बात पार्टी मुख्यालय के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौड़ेल ने बताई। बैठक में केंद्रीय कार्य समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों को सहभागिता के लिए अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय सभा की बैठक मार्ग 17 गति के लिए बुलाई गई है। संघीय संसद के महासचिव डॉ भरत राज गौतम ने आज सूचना जारी करते हुए राष्ट्रीय सभा की बैठक मार्ग 17 गति सोमवार को होने की जानकारी साझा की है। देश में आज कोरोना के 8,017 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 3,143 मामले काठमांडू घाटी के हैं। वहीं आज 5,292 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं और 15 संक्रमितों की मौत हो गई है। बहरहाल देशभर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 90,576 है। जिला प्रशासन कार्यालय पालपा ने कल शुक्रवार से अत्यावश्यक को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं स्थगित रहने की जानकारी साझा की है। प्रमुख जिलाधिकारी जगन्नाथ पंत ने आज एक बयान जारी कर कल से लेकर मार्ग 21 गति तक के लिए अत्यावश्यक के अलावा अन्य सेवाएं नहीं दिए जा सकने की जानकारी साझा की है। कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री दिलेंद्र प्रसाद बड़ू में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य में समस्या दिखने के बाद मंत्री बड़ू की पीसीआर जांच की गई थी, जिसमें वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये जानकारी मंत्रालय के सूचना अधिकारी राजा राम दहाल ने दी। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौड़ेल ने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा में सुधार के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ सहकार्य करेगी। निजी तथा आवासीय विद्यालय ऑर्गेनाइजेशन नेपाल पैप्सन और निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन नेपाल के साथ शैक्षिक सुधार के विषय में आज हुए विचार विमर्श में शिक्षा मंत्री पौड़ेल ने ये बात कही। मंत्री पौड़ेल ने कहा कि सीसीएमसी के निर्णय के बाद परिस्थिति का आंकलन करके विद्यालय सुचारू करने के विषय में निर्णय किया जाएगा। विचार विमर्श में पैप्सन ने वैक्सीन लगा चुके विद्यार्थियों को शिफ्ट सिस्टम में भौतिक उपस्थिति में ही मार्ग तेज गति से कक्षा संचालन की मांग की थी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छ त्यसरी।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *14=# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने 5 दलीय गठबंधन की ओर से राष्ट्रीय सभा सदस्य पद पर विजयी हुए नेताओं को बधाई दी है। आज एक संदेश जारी कर अध्यक्ष नेपाल ने विजयी नेताओं के कार्यकाल की सफलता की शुभकामना दी है। बता दें कि राष्ट्रीय सभा के 19 सदस्य पदों के लिए कल हुए चुनाव में एकीकृत समाजवादी के उपाध्यक्ष जयंती राय, सचिव मदन कुमारी गरिमा शाह, केंद्रीय सदस्य उदय बोहरा, गोमा तिमिल सिन्हा और राजेंद्र लक्ष्मी गैरे और गठबंधन से अन्य 13 सदस्य और नेकपा एमाले से एक सदस्य निर्वाचित हुए थे। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने देश की समृद्धि के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में विकास को महत्वपूर्ण बताया। आज धनुषा जिला के लक्ष्मीनिया में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष यादव ने कहा कि देश में विद्यमान बेरोजगारी की समस्या का अंत करने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। शहीद सप्ताह के चौथे दिन आज शहीद धर्मभक्त माथेमा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर माथेमा के जन्मस्थल काठमांडू के ओम बहाल और उन्हें अमरत्व प्राप्त करने वाले स्थल सिफल में महानगर ने माथेमा के पूर्ण कद वाली मूर्ति की प्रतिस्थापित किया है। देश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई और अन्य 9 लोग घायल हो गए हैं। आज इलाम में हुई ट्रिपल दुर्घटना में झापा की मेची नगर नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के 55 वर्षीय रमेश थापा और 40 वर्षीय सूर्य बहादुर थापा की मौके पर ही मौत हो गई। इसी तरह वीरगंज कलैया सड़क खंड के सिसनिया चौक पर बीती रात भारतीय नंबर की स्कॉर्पियो द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर देने से हुए हादसे में मोटरसाइकिल चालक कलैया उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 5 के 40 वर्षीय नरेश साह और 55 वर्षीय शीतल साह की इलाज के दौरान मौत हो गई। टक्कर देने वाली गाड़ी और चालक पुलिस के नियंत्रण में है। दूसरी तरफ रौतहट की गरुड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 4 बैरिया गांव में बीती रात मोटरसाइकिल दुर्घटना में गढ़ीमाई नगर पालिका वार्ड नंबर 9 के 19 वर्षीय मोहम्मद अल्ताफ आलम और 24 वर्षीय रवि साह की मौत हो गई। रौतहट के ही फतवा विजयपुर में रुका हुआ ट्रैकर अचानक पीछे की ओर ढुलकने से ट्रैक्टर के नीचे दबकर 4 वर्षीय बच्चे यश यादव की मौत हो गई। दूसरी तरफ आज बैथरी के मिलौली में हुई बस दुर्घटना में 8 लोग घायल हो गए। घायल सभी को इलाज के लिए डेरलधुरा ले जाया गया है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय बैतरी ने दी है। गृह मंत्रालय ने संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी फोटो या वीडियो को सामाजिक संजाल में पोस्ट न करने पर पोस्ट करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। मंत्रालय ने आज एक सूचना जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर मजाक करते हुए किसी की भी वीडियो या फोटो खींचकर सामाजिक संजाल पर पोस्ट करने से किसी को मानसिक या शारीरिक समस्या हो सकती है। इसके मद्देनजर मंत्रालय ने सभी से इस तरह के काम न करने का आग्रह किया है। संघीय संसद सचिवालय और रेडियो नेपाल के बीच कार्यक्रम प्रसारण संबंधी समझौता हुआ है। समझौता पत्र पर रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक बुद्धि बहादुर केसी और संघीय संसद सचिवालय के सह सचिव बबीता मिश्र ने हस्ताक्षर किए। बता दें कि 15 मिनट प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को मार्ग 21 गते से सुबह 7:40 पर प्रसारित किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में कोरोना के प्रकोप में लगातार तीसरे दिन भी कमी देखी गई है। संक्रमण के नए मामले ठीक होने वालों से कम रहे। सक्रिय मामलों में भी कमी आई है। 24 घंटों के दौरान 20,000 से अधिक सक्रिय मामले कम हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार आज एक दिन में 2,86,384 लोग संक्रमित हुए, जबकि बीते 24 घंटों में 3,06,357 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। वहीं 543 संक्रमितों की मौत हुई। मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामले घटकर 22,02,472 रह गए हैं। 24 घंटे की अवधि में सक्रिय मामलों में 20,546 मामलों की कमी दर्ज की गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववानी की मुलाकात। स्थानीय चुनाव, कोरोना संक्रमण लगाये विषयों में हुआ विचार विमर्श। देशभर में आज कोरोना के 8,017 नए मामले आए सामने, संक्रमित 15 की हुई मौत। मार्ग 23 गति से भौतिक उपस्थिति में ही कक्षाओं को संचालित करने के पैप्सन ने सरकार से की मांग। इस विषय में सीसीएम से लेगी निर्णय, शिक्षा मंत्री देवेन्द्र पौड़ेल का जवाब। और भारत में कोरोना के प्रकोप में लगातार तीसरे दिन दिखी गई है कमी। संक्रमण के नए मामले ठीक होने वालों से रहे कम। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।